आज जीतना की पट खोलो, आज जीतना की पट खोलो। प्रभु प्रेम किरण को आने दो, प्रभु प्रेम किरण को आने दो।
ओम शांति। थैंक यू भाई। आज हम सभी बहुत इंटरेस्टिंग सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, पैनल डिस्कशन के अंदर। घड़ी तो किसी के लिए रुकती नहीं है, बहुत जल्दी से ही आगे बढ़ती जा रही है। आगे के प्रोग्राम्स भी हम सबके पास है, तो बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सवालों का जवाब हमारे पैनलिस्ट देने की कोशिश करेंगे। पैनलिस्ट का हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। वो आप सबके नोन हैं, भाई सूरज भाई और बहन उर्मिल बहन जी। और मैं पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आंसर देंगे वो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देंगे। हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा उर्मिला बहन से है, मनन चिंतन की सहज विधि बताइए।
ओम शांति। हम सब मननशील प्राणी हैं और ये कहा जाता है कि मनुष्य का पूर्वज मनु था, इसलिए उसका नाम मनुष्य पड़ा और वो मननशील है। मनु वास्तव में ब्रह्मा का ही दूसरा नाम है और मन की नेचर है वो निरंतर मनन करता ही है, चाहे सार्थक और चाहे निरर्थक। लेकिन जितना हम निरर्थक से हटाकर के मन को सार्थक की तरफ लगाते हैं तो ऑटोमेटिक इसमें किसी भी दृश्य को देख करके, किसी बात को सुन करके, किसी घटना को देख करके एक नई और एक गहरी विचारधारा अपने आप कोंधती है। मन स्वच्छ है, व्यर्थ से मुक्त है, तो इसमें ऑटोमेटिक नए विचार कोंधते हैं मन खाली होने पे। अगर पहले ही भरा हुआ है तो उसमें नई बात आने की मार्जिन नहीं होती है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई दृश्य देख करके आप इमोशनल हो जाते हैं, किसी दृश्य को देख करके दया आती है, किसी दृश्य को देख करके साहस पैदा होता है, कोई कहानी या कोई घटना सुनकर के कई बार व्यक्ति को क्रोध आता है, किसी को सुनकर के नफरत आती है देख करके। तो ये मन के भाव हैं जो चीज को देख करके पैदा होते हैं। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, मन रिएक्ट करता है किसी भी चीज को देख करके। लेकिन चूंकि अब हम मन के मालिक हैं और मन हमारे वश में है, तो जब इसमें तुरंत कोई प्रतिक्रिया होती है तो उसको हम पॉजिटिव बना लेते हैं। बाबा क्या कहता है, इस घटना का समाधान क्या हो सकता है, इस दृश्य का, इस बात का, इस चीज से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, इससे ज्ञान में या हमारे यज्ञ में क्या बेनिफिट लिया जा सकता है। जब हम इस तरफ मन को मोड़ते हैं तो उसी घटना में से एक नई बात निकल आती है, उसी में से एक नया विचार पैदा हो जाता है, उसी में से हमको कोई प्रेरणा का अनुभव हो जाता है, उसी का नाम मनन है। अब जैसे एक पेड़ है, नॉर्मली अपन पेड़ को देखते हैं लेकिन पेड़ का परोपकारी स्वरूप हमारे सामने आता है, भाई पेड़ का फूल क्या देता है, पत्ता क्या देता है। मनुष्य तो अगर उसको पत्थर मारो तो देखो क्या करेगा, पेड़ को पत्थर मारो तो देखो क्या करेगा। अब आप इस तरह से कंपैरिजन करेंगे तो ये मनन हो जाएगा। तो ये चलते फिरते कभी भी हम कैसे भी कर सकते हैं। ओम शांति।
धन्यवाद। कहने का भाव है अभ्यास बहुत जरूरी है। हर छोटी सी बात में चिंतन करके, कल भी सूरज भाई बता रहे थे, कुछ लिखने का अभ्यास कीजिए। छोटी सी बात ले लीजिए, छोटा सा सब्जेक्ट ले लीजिए, बाबा का एक पॉइंट ले लीजिए और अभ्यास कीजिए, तो धीरे धीरे मनन चिंतन का अभ्यास होता जाएगा। भाई सूरज भाई से प्रश्न है, गफलत किसको कहते हैं? और गफलत करने से ब्राह्मण जीवन में क्या क्या नुकसान होते हैं?
खोल दो भाई, माइक खुल गया। जीवन में कोई लक्ष्य लेकर जब मनुष्य का ऐसा जीवन हो जाता है तो उसके मन की उमंग उत्साह समाप्त हो जाती है, उसके मन में ढीले संकल्प चलने लगते हैं, वो कुछ भी करता नहीं है, न करने की स्थिति में रहता है, इसको अलबेलापन कहते हैं। इससे हमारे अंदर की शक्तियों का ह्रास होता रहता है, उनमें पतन होता रहता है, वृद्धि नहीं होती, इसलिए अलबेलापन मनुष्य के पतन का कारण बनता है। कुछ लोगों को हम देखते हैं जिनमें गुणों की कमी नहीं होती, वो बहुत सहनशील हैं, बहुत खुश रहते हैं, बहुत यज्ञ सेवा करते हैं, बहुत सरल चित, सॉफ्ट स्वीट हैं, लेकिन अलबेले हैं, तो उनके वो गुण विश्व कल्याण में भी काम नहीं आते, केवल अपने तक सीमित रह जाते हैं। ये अलबेलेपन का नुकसान होता है और साथ में हमें इसे दूर करना ही है।
दूसरा क्वेश्चन है, सेवा साथियों से जब टकराव होता है तो न चाहते हुए भी क्रोध आ जाता है, ज्ञान होते हुए कि क्रोध नहीं करना, अनुमान नहीं लगाना, पर हो जाता है, तो उससे मुक्त होने का सहज तरीका क्या? और उसके साथ साथ ही है, व्यर्थ न चाहते हुए मन में आ जाता है,
समझ होते हुए भी
आ जाता है, उससे बचने का तरीका क्या? मैं समझती हूँ कि लंबे चौड़े क्लासेस हुए हैं इस पर, तो फिर भी। और साथ साथ तीसरा क्वेश्चन है, हिसाब किताब कभी कभी न चाहते हुए बन जाता है, हिसाब किताब न बने उसके लिए क्या करना चाहिए? हम तो संगठन में रहते हैं और रहना ही क्या पड़ता है, अगर समर्पण हुए हैं तो रहना ही पड़ेगा। भाई सूरज भाई जी,
क्वेश्चन लंबा है उत्तर छोटा। टकराव से स्वयं को बचाना अपने हाथ में है, टकराव की आदत हो जाए बहुत मुश्किल काम है, इसलिए अपने ईगो को, अपने अहम को स्वमान के अभ्यास के द्वारा कम करते चलें। स्वमान ही अभिमान को समाप्त करता है, उससे हम टकराव से बचेंगे। क्रोध बहुत बुरी चीज है, संबंधों में जहर घोल देता है, मुख से कड़ू वचन निकलते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। सवेरे उठकर केवल आप 7 दिन प्रयोग करके देखें, मैं आत्मा शांत हूं, क्रोध मुक्त हूं, बहुत गुड फीलिंग के साथ 7 बार ये संकल्प कर लें 7 दिन तक, क्रोध डाउन हो जाएगा, साथ में दूसरे को दोष देने की नेचर खत्म करें। चेंज हमें स्वयं को करना है। अशुभ भावनाएं होंगी, कर्मिक अकाउंट, कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा, टकराव से बढ़ेगा, व्यर्थ चिंतन से भी बढ़ेगा, इसलिए कर्मों के खाते को बढ़ने से रोकने के लिए मैं पूर्वज हूं, इष्ट देव हूं, कल्याणकारी हूं, मुझे सबको शुभ भावनाएं देनी है। रोज सवेरे अपने चित्त में संभालें, ये सभी चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, तेजी से भी ठीक हो सकती हैं। और मुख्य बात यह है, लास्ट लाइन, हमें इनसे बचने की गहरी इच्छा होनी चाहिए, बस बच जाएंगे।
बहुत अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट। हमारी इच्छा होनी चाहिए, और मैं समझती हूँ कि अमृत वेले जब आप उठते हैं तो आप जिन जिन के साथ रहते हैं उन सभी आत्माओं को योगदान देने का भी अभ्यास हमें मदद कर सकता है। बाबा ने अभी राखी का बहुत अच्छा संदेश दिया है, वो मुझे याद आता है, दिल बड़ी करो, कमजोरी को समाओ, उनको क्षमा भी करो और फिर उनको दुआ भी करो, ये भी एक बहुत अच्छा मुझे लग रहा था। अभी उर्मिल बहन से पूछते हैं, प्रश्न पुरुषार्थ का नहीं है परंतु जानकारी का है। पहले यज्ञ की शुरुआत में परमात्मा को ज्योतिर्लिंगम स्वरूप में माना गया, जैसे कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है, बाद में जैसे बाबा ने बताया ज्योति बिंदु स्वरूप, तो क्या दादियों ने परमात्मा को ज्योतिर्लिंगम मान के तपस्या की और आज हम बिंदु रूप में मां की तपस्या कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? एक लाइन है, क्योंकि स्वरूप का कनेक्शन योग से गहरा है।
ओम शांति। दादी शांतामणि जब मुरली सुनाती थी तो यज्ञ का इतिहास भी सुनाती थी, तो उन्होंने तो हमें ये सुनाया कि जब बाबा कराची में थे तो शुरू शुरू में हम कृष्ण मान करके बाबा को याद करते थे, कृष्ण आया है, कृष्ण आया है, सबको बस यही आकर्षण था। कुछ समय के बाद फिर बाबा ने स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण ये ब्रह्मा है, लेकिन श्री कृष्ण को बनाने वाला ये ज्योतिर्लिंगम है। फिर हमने ज्योतिर्लिंगम को याद करना शुरू किया। हमारे जो पुराने चित्र हैं उसमें अंगुष्ठाकार चित्र, बहुत पुराना, 50 से पहले का अगर किसी के पास मिलेगा तो वो उसी आकार का बड़ा रूप मिलेगा। लेकिन बाद में यहाँ माउंट आबू में आने के बाद बाबा ने स्पष्ट किया कि मेरा स्वरूप बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। और इसके ऊपर जब कईयों ने प्रश्न उठाए कि बाबा पहले आपने ऐसे बोला फिर ऐसे, तो भी बाबा ने कहा कि चूंकि पढ़ाई जारी है इसलिए बाबा पढ़ाते रहेंगे और नए नए रहस्य खोलते रहेंगे। फिर ये भी कहा गया कि चूंकि बाबा आते ही ज्योति बिंदु स्वरूप बता देते तो बच्चों को ज्योति बिंदु का तो ना ज्ञान था ना उसमें भावना थी, तो योग लगाना बड़ा मुश्किल होता, और कृष्ण में तो भावना बनी हुई थी इसलिए पहले कृष्ण के नाम से बुलाया बच्चों को, फिर ज्योतिर्लिंगम रूप, और लास्ट में जब देखा हाँ बच्चे अभी काफी मजबूत हो गए हैं तब बाबा ने बताया कि हाँ मेरा रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो इसलिए पढ़ाई जब जारी है तो बाबा नई नई बात तो बताते रहेंगे, आगे और भी कई रहस्य खुलेंगे जो अभी तक मुरली में नहीं खुले।
भाई सूरज भाई जी, आपके लिए प्रश्न है, शुभ भावनाएं रखने से कोई आत्मा का पूर्ण परिवर्तन हो गया हो ऐसा कोई अनुभव हो तो सुनाए।
अनुभव एक साथ याद करना, अनुभव तो शुभ भावनाओं से बहुत होते हैं। पहले मैं आपको कह दूं कि शुभ भावनाओं के पीछे हमारी शक्तियां कितनी हैं उसके आधार से शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस दूसरों पर काम करते हैं। अगर हमारी अपनी शक्तियां बहुत कम हैं तो हमारी शुभ भावनाएं धीरे धीरे काम करेंगी, पर करेंगी अवश्य। मैं किसी का नाम लेकर नहीं बताऊंगा, पर हम संगठन में रहते हैं और संगठन में सब तरह की आत्माएं सबके साथ रहती हैं, मित्र भी और परम मित्र भी, समझते हैं ना आप, मित्र भी और परम मित्र भी। और जीवन में परम मित्रों का होना परम आवश्यक है, वही हमारे सच्चे टीचर हैं जो हमें पावरफुल बनाते हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं। मैं हमेशा ये सोच कर रखता हूं, मैं ये सोचता नहीं कि लोग मेरा विरोध क्यों करें, मेरी निंदा क्यों करें, मेरे लिए कुछ भी शब्द क्यों बोलें जब मैं अच्छा हूं। मैं सोचता हूं मेरी दृष्टि में तो मैं अच्छा हूं, उनकी दृष्टि में ना हूं तो जरूरी है। तो मैंने जीवन में बहुत प्रयोग किए हैं और रिजल्ट सचमुच बहुत सुंदर हुआ है। एक व्यक्ति, एक कुमार जो हमारा साथी, हमारा गहरा फ्रेंड, पहले से ही हमसे कंपटीशन रखता था, जैसे महात्मा बुद्ध के साथ देवदत्त रखता था, सुनिए ना कहानी। लेकिन हम उनसे बहुत प्यार करते थे, हमारी दोनों की फ्रेंडशिप भी बहुत गहरी थी, और मैं ये सोचता था कि इसकी हर बात को मुझे पॉजिटिव लेकर इसके लिए भी अच्छी भावना रखनी है और कुछ सीखते चलना है। तो मैं उसको अच्छी फीलिंग्स देता गया, मन में ये कभी नहीं रखा ये मेरा विरोधी है, ये मेरा मित्र है, ये मुझे आगे बढ़ाएगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक बात पक्की कर ली थी, कहीं से मुझे मिल गई थी, कोई तुम्हारा एक द्वार बंद कर दे तो बाबा तुम्हारे 5 द्वार पहले ही खोल कर रखता है, डोंट वरी। बिल्कुल मैंने कभी विचार नहीं किया कि कौन मेरा द्वार बंद कर रहा है, कर दो इससे सुंदर खुलने जा रहा है, तुमने 3 फुट का द्वार बंद किया 10 फुट का मिलने जा रहा है। तो मैंने उनके लिए शुभ भावनाएं रखी और वो सब बदल गया, और मैं इसको अपने जीवन में बहुत अप्लाई किया है, अच्छी भावनाएं। और इसका प्रभाव तब होता है जब हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए जरा भी घृणा भाव न हो। तो मैं कोशिश करता था बिल्कुल घृणा भाव नहीं। जब बाबा ने मुरली में ये बोला, चाहे कोई रावण से भी बड़ा शत्रु हो उसको भी शुभ भावनाएं देनी है, याद है ना। तो मैं सोचा रावण से बड़े तो कोई है नहीं, ये तो हमारे छोटे हैं, थोड़ी बहुत बात करते हैं, हम उसे बड़ा समझ लेते हैं। तो सचमुच कम से कम 100 केसेज में मेरे एक्सपीरियंस होंगे। एक मैंने ये संकल्प रखा था शुभ भावनाओं के साथ, नो रिएक्शन, रिएक्ट नहीं करना है। तो रिएक्ट न करने से वो व्यक्ति सोचने के लिए बाध्य हो जाता है, हम इतना बोल रहे हैं ये चुप है, क्या बात है, हो गया या नहीं, और उसमें परिवर्तन हो जाता है। ये मैंने किया है जीवन में और इसके सचमुच बहुत गुड रिजल्ट हैं।
बहुत अच्छा। मैं अपना एक अनुभव सुनाती हूँ। जैसे आप सबको पता ही है कि यज्ञ बहुत बड़ा है, ड्रामा वंडरफुल होता है। ऐसे हुआ था कि भाई कोई हमारा नेचर ऐसा है कि हम हर एक को मित्र ही समझते हैं। कोई हमारे से बोले ना बोले हम तो सामने से जाके बोलेंगे ही। पर किसी ने अपने मन में ऐसा रखा होगा कि भाई बहन से बात नहीं करनी है। उनका ऑपरेशन था और मुझे बताया ही नहीं था कि भाई उनका ऑपरेशन है, तो हम तो पहुंच ही जाते थे। ऑपरेशन था, उनको अनकॉन्शियस किया गया। जब अनकॉन्शियस किया गया और कॉन्शियसनेस में आने थे, तब पहला उसने मुझे याद किया, निरन्ना आई कि नहीं आई। तो उनके आजू बाजू जो खड़े थे उन्होंने बोला कि सबसे पहले उन्होंने आपको ही याद किया। क्यों? क्योंकि हमारा भाव शुद्ध भाव था। मुझे बड़ा आनंद हुआ कि हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो मैं दुश्मन मानता हो उनके मन की गहराई हो, मैं हमारा मित्र स्वरूप हो। ये बहुत अच्छा हमें अनुभव हुआ। हमारी पैनल में बहन चक्रधारी बहन जी ज्ञान सरोवर में विशेष ऊपर मुरली सुनाने और भोग लगाने के लिए गए थे। अभी हम सबके सामने उपस्थित है। हम पैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपका ही क्वेश्चन आया हुआ है सामने। बहन जी पूछ रहे हैं सेंटर में जिज्ञासुओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। भंडारी में सहयोग कैसे बढ़े।
जरूर है, भाइयों को ये चिंता ज्यादा होती होनी ही चाहिए, क्योंकि शिकार लाना भाइयों का काम होता है और शिकार आए हुए को गोली मारना बहनों का काम होता है। अब तीर मारने वाले तो बैठे हैं, अब शिकार लाने वाले कैसे? अगर शिकार ही आप ऐसा ले आए जब मरा मराया है तो वो तो शिकार करने से क्या फायदा। कोई शिकार भी ऐसा हो जो शिकार करे तो कुछ आनंद तो आ जाए। तो वास्तव में देखा जाए तो जिज्ञासुओं की संख्या कैसे बढ़ाएं, बाबा हम बच्चों को यही कहते हैं, जिस स्थान पर जिसको लाते हो उस स्थान का वातावरण ऐसा चुंबकीय होना चाहिए। ये प्रथम चीज है कि आते उनको ऐसा लगे कि मुझे किसी महान तीर्थ स्थल पर यहाँ लेकर आए। पहले हम अपने से पूछे, हमने उस स्थल का ऐसा वातावरण बनाया हुआ है, सफाई सुथराई, ऐसा ना आते उसे चावलों की खुशबू आ रही है, उधर कोई छोंक लग रहा है, विसल हो रही है, गंदगी पड़ी हुई है। थोड़ा वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बहुत चुंबकीय हो, आकर्षणीय हो। ये सबसे पहली चीज, सफाई सुथराई और मनोस्थिति से वातावरण। फिर दूसरा है कि जब उसको जो भी बहन या भाई अटेंड करते हैं, अटेंड करने वाला भी यही मन में समझे कि प्यारे बाबा का ये पुत्र कल पहले वाला पिछड़ा हुआ आया है, इसलिए इसको प्यारे बाबा का वर्षा हमें जरूर दिलाना है और बड़े ही प्यार से उसे ऐसे ही देखें, ये बाबा का बच्चा बाबा के घर में बहुत बड़ा मेहमान। जैसे हमारी दादियां सुनाती हैं कि शुरू शुरू में हम थोड़ी बहनें थी सिंध हैदराबाद में, लेकिन जो बहनें बाहर गेट पर खड़ी होती थी, किसी को आता देखकर उनके हृदय में ऐसा आता था, तो उनका उस समय ये शब्द था, आओ मम आत्मा, आओ मम आत्मा, ऐसे उनको मिल लेते थे जैसे मान लीजिए को बिछड़ा हुआ आकर मिल गया। लेकिन यहाँ के मिलना ये नहीं कि आओ मम आत्मा कहने लग जाओ, वो तो एक सिंध घराना था और एक दो को सब जानते थे इसलिए उनका बोलना ऐसा था। लेकिन हम उनको आप भगत भी ऐसे कभी कभी देख के कहते अरे ये क्या ले आए, गरीब बड़ा सा है ये क्या करेगा यहाँ आकर के, ना कुछ सहयोग देगा ना कुछ। और कोई बड़ा अप टू डेट आ जाए तो भी कहते हैं कि इसको तो समझाने वाला कोई बहुत बड़ा चाहिए, मेरी बहन जी तो सिंपल सी है हम भी नहीं समझा सकेंगे इसको कैसे समझाएंगे। कोई भी आए ये आत्मा है, भिन्न चोले में है, ईश्वर के घर में आई है, ऐसी भावना रख के हम बाबा के वरतन उसको दे रहे हैं। हम ये न रखे ये जिज्ञासु बन जाए ये क्लास वृद्धि हो जाए, उस समय हम थोड़ा देह अभिमान आता है कि जिस सेंटर पर हम हैं हमारी क्लास के स्टूडेंट्स बढ़ने चाहिए, हम उस भावना से समझते ये रहे, हमारी ये भावना ना हो। हमारी केवल भावना है दाता ने जो मुझे देन दी है वो दाता की देन से इस आत्मा को भी भरपूर करना है, ऐसा स्नेह सम्मान और मन में शुभ भावना और शुभ कामना अगर सर्व के लिए बनी रहे, चाहे वो प्रश्न पूछे या ना पूछे, व्यर्थ से बोले या ना बोले, हमारी बात सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, लेकिन हम उसको हृदय से रिस्पेक्ट स्नेह और रिगार्ड देते रहें, आज नहीं तो कल वो आत्मा आएगी जरूर। इसलिए इस बात का ख्याल रखेंगे तो धीरे धीरे विद्यार्थी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी मनोस्थिति और हमारा वातावरण बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। सुनाने वाला चाहे कोई कितना भी साधारण हो, बाबा ने कहा हुआ है अगर मेरा बच्चा क्लोज बच्चा कोई आएगा तो मैं प्रवेश होकर भी उस बच्ची में अपने बच्चे को संभाल लूंगा। तो हम कभी ये ना कहें कि पता नहीं कौन समझाएगा, समझा सकेंगे कि नहीं, नहीं, हम सब जो आसपास वाले हैं वो भी योगदान दें और जो समझा रहा है उसकी ऐसी मनोस्थिति। तो मैं समझती इससे विद्यार्थियों की संख्या दिनों दिन स्वयं ही बढ़ती चली जाएगी। कुछ और कहना?
हाँ, मुझे याद आ गया भाई बहन जी की बात सुन के, पहले तो मुझे ख्याल नहीं था पर सुनते सुनते एक चीज ख्याल आ गई, मैं आप सबको कहूंगा और मैं टीचर बहने जो जहां मैं जाता हूँ उन सबको भी ये बात कहता हूँ। देखिए एक समय था, दीदी जानती है, कि हमारे पास लोग ज्ञान लेने आते थे, हम उन्हें ज्ञान देते थे। आजकल लोग हमारे पास समस्याएं लेकर आते हैं। जैसे संसार बदल रहा है, हमें अपने ज्ञान देने के तरीके को भी बदलना चाहिए। हर फील्ड में आप देखते हैं, चाहे बिजनेस हो, नौकरियां हो, कंप्यूटर फील्ड हो, सॉफ्टवेयर हो, बदलता जा रहा है। हमारा तरीका अगर 50 साल पुराना है, लोग उसको आजकल स्वीकार नहीं करते। अभी मैं आईटी वालों के साथ था, 150 हैदराबाद में इंजीनियर्स, सब ये चाहते थे कि हमें नई तरीके से ज्ञान दिया जाए। तो मैं आप सबको ये कहूंगा, आप भी उस फील्ड में हैं, जिस कामना से लोग हमारे पास आ रहे हैं वो यदि उनकी पूर्ण होगी, हम ज्ञान इस तरह देंगे, योग इस तरह सिखाएंगे, तो सेवा अवश्य वृद्धि को पाएगी। साथ में हमारे सेवा स्थान का और जो भी निमित्त हों उनके वाइब्रेशंस जितने पावरफुल होंगे सेवा बढ़ेगी। एक छोटा सा अनुभव सुनाओ, मैं बहुत जगह कराया है। मुझे गीता पाठशाला वाले ने कहा, हमारे गीता पाठशाला में बहुत साल से 20 स्टूडेंट हैं, बढ़ नहीं रहे। मैं पूछा घट तो नहीं रहे, भगा भी देते हैं ना कुछ को, नए आ जाएं पुराने जाएं। कहा नहीं, न घट रहे न बढ़ रहे। मैंने उससे, वो अकेला ही था, केवल अकेले ने 21 दिन योग अभ्यास किया कुछ अच्छे स्वमान से, और आप हैरान होंगे बिना कुछ किए 6 मास में उसकी संख्या 40 हो गई। मैं बहुत सेंटर्स पे कराया है और बहुत गुड रिजल्ट हैं। देखने में ये आता है कि देवकुल की आत्माएं तो आना चाहती हैं, हमारे गुड वाइब्रेशंस उन्हें अट्रैक्ट करेंगे।
ओम शांति। सूरज भाई से क्वेश्चन किया है। सूरज भाई जी, आपसे क्वेश्चन है।
हाँ।
आप एक माता जी और उसकी बच्चे की बात कल करते किया
हाँ,
था
हाँ।
आपका सवाल था बच्चे को मुक्ति चाहिए, उसने मना किया, पर अगर वो कहती कि मुक्ति चाहिए तो आप क्या जवाब देते?
चक्रधारी दीदी, कल एक बात आई थी तो मैं दोबारा सुना देता हूँ। हिमाचल प्रदेश की एक बुजुर्ग माता जिसकी आयु 90 इयर्स हो रही थी, जो 50 साल से ज्ञान में थी, बहने मेरे पास आई, मैं अमृतसर गया था, और कहा भाई ये माता सारा दिन रोती है, आसपास के लोग, उसको पता नहीं वो क्यों रोती है, आसपास के लोग बहुत बुरा फील कर रहे हैं कि 50 साल की राजयोगी की अंतिम स्थिति इतनी खराब क्यों है। बहनों ने कहा हमारी डिसर्विस हो रही है, क्या कोई ऐसी विधि हो सकती है कि ये मुक्त हो जाए? मैंने पूछा उसकी इच्छा है ऐसा ना हो, पाप हो जाए? तो कहा नहीं, वो बहुत कहती है बाबा मुझे ले चलो। तो मैंने एक प्रयोग करा, ये प्रयोग मैं 3 जगह करा चुका हूं, लेकिन बहुत पूछताछ के वो चाहती है। तो मैंने उनको कहा 21 दिन योग करना, इस स्वमान से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर मुक्ति दाता हूं। दूसरा, पानी चार्ज करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इस संकल्प से उसे पिलाना और संकल्प करना आत्मा देह से मुक्त हो जाए। तो ये बुजुर्ग माता 5 दिन में मुक्त हो गई। बहनों ने मुझे फोन किया, बड़ी खुश थी। ऐसे ही एक और माता का कराया था, वो बहुत बुजुर्ग थी, वो 11 दिन में मुक्त हो गई। लेकिन आपको मुक्ति नहीं देनी है ऐसे। ये तो मैंने उनसे बहुत पूछताछ की और ये देखा कि बाबा की ये शक्तियां, योग की शक्ति, समस्याएं थी उनकी, इसको भी हल कर सकती है। तो यही मैं उनको बताता।
बहुत अच्छा।
मैं बीच में कह देती हूँ, बात तो अच्छी सुना रहे हैं बहुत, कहीं आप भी 5-5 दिन 7-7 दिन योग करके और जल पिलवाने शुरू कर देना। ये मुझे बहुत तंग करता है, हर समय मेरे साथ ही है, इसलिए 7 दिन पानी इसको पिला के ही छोड़ूंगा अब तो मैं। थोड़ा इन बातों को हमें इस रूप से यूज नहीं करना, बहुत ध्यान रखना ये चीजों का थोड़ा, क्योंकि खास कहा गया है करामत कैर खुदाई। अगर ऐसे करामात आप करते हो तो खुदा की तरफ से कहर आता है, इसलिए इन बातों को मैं ऐसा समझती, इस रूप से हम यूज ना करें कि तुम्हें मुक्ति देने के लिए चलो 7 दिन का पानी पिलाए तुम्हें भी और चल आगे हो जाओ तुम भी भाई। वो थोड़ा सा उनका भाव अवश्य समझेंगे आप कि इनका भाव क्या है और अपना भाव इस रूप से समझने की जरूरत है।
अब दादी जी हम सबके सामने उपस्थित है, हम दादी जी का स्वागत करते हैं। दादी जी से प्रश्न है।
आपका ही प्रश्न लिख के रखा था, आपका प्रश्न नहीं, आपके अनुसार ही है।
आदरणीय दादी जी, आपसे नम्र निवेदन है, जिस प्रकार बहनों एवं कुमारियों की ट्रेनिंग रखते हैं, उस दौरान रहन सहन, मर्यादाएं, व्यवहार, धारणाएं, इस विषय में बारीकी से बताया जाता है, क्या हम कुमारों की ऐसी ट्रेनिंग नहीं हो सकती?
ये बड़ी अच्छी बात है, आपकी इसी मांग पर हमें तो खुशी है। और ऐसे बीच में बात निकली भी थी, परंतु सोचा गया कि कुमार भाई बहने तो सब फ्री होके आ जाती है, और कुमार भाई इनों की भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं, नौकरियां या कुछ भी मतलब होती है, तो उन्हों का कंपलसरी ऐसे रखा जाए क्लास, तो जरा सोच में रहा। और अभी तो आप समर्पित भाई बहने हैं, इसमें भी देखो मैंने एक ग्रुप आया, तो जब मैंने पूछा इस भट्टी में आया तो सब अपना अपना काम करने वाले थे। मैंने कहा फिर समर्पण में कैसे आए हो? तो मुस्कुराने लगा। तो क्या है कि कुमारियां तो समझो खास समर्पण होती है, सेंटर पर रहती है और इसी भाव से सर्व बातों से निवृत्त होकर के तो उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे पक्की ज्ञान में भी पक्की हो और धारणा भी अच्छी रहे, तभी वो सेंटर पर रह करके औरों की सेवा कर सकती है। वैसे तो ट्रेनिंग हम सबके लिए है, चाहे हम कितने भी पढ़ाई में आगे हो जाएं, फिर भी ट्रेनिंग अर्थात रिफ्रेशर कोर्सेस तो वो हम भट्टी के नाम से करते हैं, ट्रेनिंग के नाम से नहीं करते हैं। परंतु अभी आप लोग तो सब बड़े बहुत वर्षों वाले हो गए, समर्पित होकर के सेवाओं में लगे हुए हैं। हम जो ट्रेनिंग रखते हैं नई कुमारियों की रखते हैं, जो फिर टीचर बन करके और सेंटर चलाया कैसे जाए, कैसे आपस में संगठन में रहा जाए, हर बात की ट्रेनिंग, नॉलेज की भी समझाना है, 7 दिन का कोर्स उसकी भी ट्रेनिंग, और फिर नियमों पर चलने की भी ट्रेनिंग और साथ में संगठन में रहने की भी ट्रेनिंग। इसलिए फिर भाइयों के लिए विचार करके फिर उस बात को छोड़ दिया, क्योंकि समझा कोई नौकरी वाले कोई कैसे है क्या है तो उसका नहीं रख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों की मांग है, चाहते हो, तो फिर उसी अनुसार हम सोच भी सकते हैं।
दादी जी एक बात भाइयों की ओर से कहूं, कह दो भाई नहीं ऐसा है दादी के कुछ भाई जो सेंटर में रहते हैं नौकरियों में नहीं है 2 साल से 3 साल से, उनको कुछ ट्रेनिंग की जरूरत रहती है। सबका नहीं, 200-250 का ग्रुप आ जाए जैसे बहनों का आता है तो ये बड़ा फायदेमंद होगा उनके लिए भी और सेवाओं में भी।
दादी हम भी ऐसा समझते हैं।
वैसे तो हम कहें जो रहते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है।
हाँ, उनकी जरूरत है।
मैं ऐसा समझती हूँ कि ट्रेनिंग में भिन्नताएं होती हैं। जो बहनें ट्रेनिंग करने के लिए आती है उनकी ट्रेनिंग और जो भाई ट्रेनिंग के लिए हो उनकी ट्रेनिंग, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग और उनकी ट्रेनिंग में भिन्नताएं होंगी। उनकी ट्रेनिंग है विशेष रूप से भाइयों की, क्योंकि सेवा में उनका सहयोग अपने प्रकार का है, टीचर्स बहनों का सहयोग अपने प्रकार का। अगर सारे टीचर बन के बैठ जाएं तो फिर तो काम हो गया बाबा के सेवा केंद्र का। हर एक की अपनी विशेषता होती, लेकिन भाइयों को इस चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है कि मान मर्यादाएं ईश्वरीय परिवार की क्या होती हैं, नियम इसके क्या होते हैं, बहनों का भाइयों का, भाइयों का बहनों का संबंध किस प्रकार होना चाहिए, उनकी पहरवाइश कैसी होनी चाहिए, उनका लौकिक और अलौकिक से संबंध किस प्रकार होने चाहिए, जो चीजें उनके चलते चलते इस ईश्वरीय जीवन में बाधाएं बन जाती हैं, उनकी अगर उनको पहले से ट्रेनिंग मिल जाए तो मैं समझती हूँ सेवा केंद्र के वातावरण में भी सात्विकता भी आएगी, स्नेह सहयोग भी होगा और हर प्रकार से अपनी सेवाओं को सहज रूप से दे भी सकेंगे। टीचर्स बहनों की ट्रेनिंग होती है, उनको कोर्स कैसे कराना है, जिज्ञासु कैसे समझाना है, भोग के लिए क्या विधि है, क्लासरूम को कैसे बनाएं, जिज्ञासुओं को पालना कैसे दें, उनका अपना डिपार्टमेंट होता है और भाइयों का अपना डिपार्टमेंट। उसके लिए कोर्स रचा जा सकता है और उन भाइयों को जो भाई अभी कुछ समय से सेंटर में आ गए या आना चाहते हैं, ऐसे भाइयों की ट्रेनिंग, बाकी जो 10 साल 15 साल 20 साल से रहे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग क्या होगी। हाँ, उनको समय प्रति समय बुलाकर ईश्वरीय नियम मर्यादाएं, ईश्वरीय यज्ञ में रहने के कायदे कानून ये बताने की कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी को आवश्यकता रहती है और वो समय प्रति समय क्लासेस में होता रहना चाहिए, ट्रेनिंग के लिए अलग चीज हो जाती है।
चक्रधारी बहन से प्रश्न है।
ये तो अच्छी बात है, वो तो जैसा जैसा ग्रुप होगा उनके लिए ऐसा ट्रेनिंग का कोर्स रखेंगे, परंतु अगर भाइयों की इच्छा है तो हम बना सकते हैं।
तो शीघ्र ही आप सबको दादी जी बुलाएंगे ऐसा आयोजन करके ट्रेनिंग के लिए। अच्छा चक्रधारी बहन जी से प्रश्न है। हाँ दूसरा है उनको दिया हुआ है, आपने जो क्लास कराया था उसके रेफरेंस में है, जैसे कि साकार मूल्यों में और अव्यक्त बाप दादा ने बताया ऐसा नाजुक समय आने वाला है जो ढेर की ढेर आत्माएं मच्छर मिसल वापस जाने के लिए जाएगी, उन लोगों के लिए हमें योग करना है और मुक्ति देना है। बाबा कहते हैं सकाश दो, तो थोड़ा स्पष्ट कीजिए कैसे सकाश दे। वैसे तो आपने क्लास में बताया था पर तो भी दो लाइन में आप बता सकते।
मानो जिन्होंने लिखा है वैसे तो सुनाया गया, क्योंकि सकाश देने का बाबा ने जो तरीका हम बच्चों को बताया कि बच्चे विश्व के ग्लोब के ऊपर बैठ जाओ और जैसे सर्वशक्तिवान दाता सर्वशक्तियां लाइट और माइट के स्वरूप से मुझ आत्मा को दे रहा है और मैं आत्मा रिसीवर बन उन शक्तियों को रिसीव कर रही हूं, और मन में केवल एक शुभ भावना है कि इन शक्तियों का सहयोग जो आवश्यकता वाली आत्माएं हैं विश्व भर में ये सब उनको भी प्राप्त हो। तो जैसे मुझे प्राप्त हो रहा है मेरी शुभ भावनाओं के आधार से वो शक्तियां जो मैं अनुभव कर रही हूँ वो वाइब्रेशंस का रूप लेकर के चारों तरफ स्वाभाविक है वो वाइब्रेशंस जाते हैं। कोई अच्छा मनुष्य खड़ा होगा उसके भी वाइब्रेशंस आते हैं, कोई बुरी भावनाओं से खड़ा होगा अचानक उसको देखकर उसके भी वाइब्रेशंस आते हैं, और अगर हम योग युक्त होकर बैठे हैं या विश्व के ग्लोब पर बैठे हैं और बाबा से सर्व शक्तियां ले रहे हैं तो हमारी सर्व शक्तियों की जो स्थिति है उस समय लाइट और माइट की अनुभूति की जो अवस्था है वो अवस्था वो वाइब्रेशंस देती है, और हमको मन में केवल यही है कि जो दाता ने मुझे दिया ये सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए, और जो आत्माएं उन चीजों की आवश्यकता वाली होंगी जिसको बाबा ने हमें स्पष्ट किया भी हुआ है कि रेडियो स्टेशन पर अगर कोई कार्यक्रम चलता है लेकिन जिसका जिसको जो स्टेशन चाहिए अगर उसका रेडियो में वो वेव लेंथ पर उसका वो स्टेशन कायम कर काबू है वो स्टेशन चल रहा है तो वो समय वो प्रोग्राम कैच कर लेता है। तो अगर कोई अशांत आत्माएं हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, असंतुष्ट हैं, असहनशील हैं, तो जैसे जैसे हम वो साकाश लेते हैं तो वो हमारा वाइब्रेशन के रूप में सर्व आत्मा को जरूर जाएगा। ऐसी स्थिति का अभ्यास प्रतिदिन प्रतिपल जब समय मिले या निश्चित समय बनाकर भी हमको करते रहना चाहिए, तरीका यही। उस समय कुछ और न सोचें कि मैं किसी इन आत्माओं को दे रहा हूँ या उस आत्मा को दे रहा हूँ, हमें इस सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा काम है दाता से शक्ति लेना और मन में इन भावनाओं को प्रथम भर लेना कि ये शक्तियां जो मुझे दाता से मिले सर्व को जाए, तो स्वतः ही ये वाइब्रेशंस रूप में जाएंगे और जिस जिस को जरूरत होगी वो आत्माएं उन शक्तियों को अवश्य प्राप्त कर अल्पकाल का सुखद अनुभव जरूर करेंगे, चाहे वो कहां भी विश्व के कोने में है, बाबा का ऐसा बताया हुआ है। ठीक है,
उर्मिला बहन से प्रश्न है, किसी ने प्रश्न पूछा है क्या सेंटर पर अज्ञानी व लौकिक पढ़ाई करने वाले बच्चे रह सकते हैं?
बाबा ने जो हम बच्चों को नियम बताया है उसके अनुसार अज्ञानी तो सेंटर पे नहीं रह सकते, और पढ़ाई करने वाले बच्चे वो टीचर पर डिपेंड करता है कि वो उसकी परिस्थिति के अनुसार क्या निर्णय लेती है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर का ही कोई मित्र संबंधी अज्ञानी है, वो दो दिन के लिए चार दिन के लिए चलो मेहमान बन के रह गया, वो तो एक अलग बात है, लेकिन परमानेंट तो कोई नॉन बीके सेंटर पे नहीं रह सकता। और स्टूडेंट पढ़ने वाली कन्या है, क्या उसके आगे पीछे की मजबूरी है, तो वो फिर टीचर जैसा डिसीजन ले उसके बारे में फिर अपन निश्चिंत हो जाए, क्योंकि टीचर जो डिसीजन ले उसमें अपने को भी निश्चिंत रहना।
सूरज भाई से, व्हाट इज सबकॉन्शियसनेस? सबकॉन्शियसनेस क्या है और संस्कार क्या है?
संस्कारों को तो आप जानते हैं, जो कर्म हम बार बार करते हैं उसकी सूक्ष्म वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन में, हमारे मन में प्रिंट हो जाते हैं, वो संस्कारों के रूप में काम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं, माइंड के ही काम करने का एक तरीका है। बहुत पहले से इसी इंग्लिश शब्द के लिए संस्कृत में एक शब्द प्रचलित था, चित्त। बाबा भी बोल देते थे, हम लोग भी बोला करते थे, और सब लोग पूछते थे ये चित्त क्या है, जिसमें गहन चिंतन होता है वो चित्त होता है। सबकॉन्शियस माइंड का ही दूसरा नाम चित्त है। तो मन के काम करने के मनोवैज्ञानिकों ने ये कई स्वरूप देखकर, जैसे हम सोचते हैं इसको चेतन मन कह दिया, मन तो चेतन ही होता है। जो हमारा अंदर मेमोरीज भरी हुई हैं, स्मृतियां भरी हैं, जो दबी रहती हैं, उसको अर्ध चेतन मन कह दिया, सबकॉन्शियस माइंड कह दिया, अनकॉन्शियस माइंड भी कह दिया, जिसको हम समझ सकते हैं आत्मा के संपूर्ण विकार और 63 जन्मों के पाप कर्म जिसमें भरे हुए हैं, जो जागृत नहीं है, छुपे हुए हैं, उसको अनकॉन्शियस माइंड कह दिया। जब हम बाबा को याद करते हैं इसको उन्होंने सुपर कॉन्शियस माइंड कह दिया। जब हम बहुत ऊंची स्मृतियों में रहते हैं जिन्हें हम स्वमान कहते हैं, इन्हें उन्होंने हायर कॉन्शियसनेस कह दिया। ये मन के काम करने की अलग अलग स्थितियां हैं और कुछ नहीं। कल मैंने आपको कहा था जब हमारा चेतन मन शांत हो जाता है तब जो मन की स्थिति काम करती है उसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, बस। और इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है।
चक्रधारी बहन जी से एक बहन ने पूछा है, मैं सेवा केंद्र पर रहकर के लौकिक सर्विस करता हूँ, लौकिक बहनों को पैसे देने की बात आती है जो ज्ञान में नहीं है, तो क्या करना चाहिए? वो तो लौकिक कार्यों में ही नकद राशि यूज करेंगे, तो उनको देना कहां तक मर्यादा है? साथ साथ क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ उसका। लौकिक टीचर होने के नाते बच्चों पर हल्का गुस्सा करना पड़ता है, कहां तक उचित है? अशारीरिक अवस्था का अभ्यास करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? वो तो अलग है, पर्सनल बात, ये पर्सनल बात है, वो दादी जी से मिल ले, दादी के क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ठीक है। अशुद्ध, अभी दूसरा, अशुद्ध आत्माओं का प्रकोप दिनों दिन बढ़ना है, हाँ वो दादी साथ में बताएंगे, पर्सनल मिल लेंगे दादी से। अच्छा, आगे मैं बहन चक्रधारी बहन जी, अशुद्ध आत्माओं का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता है, उसके प्रभाव से मुक्त कैसे रहे? साथ ही साथ है, कोई भाई बहन अशुद्ध आत्मा के प्रभाव में आ गए हैं, उसको कैसे उस आत्मा के प्रभाव से मुक्त कर सकते हैं? अच्छा, उसके पहले वाला प्रश्न जो दादी ने पर्सनल कहा वो सबके लिए भी उपयोगी हो सकता है, इसलिए फिर से पूछती हूँ। सेवा केंद्र पर रहते हैं, लौकिक जॉब करते हैं, समय पर अपने लौकिक बहनों को पैसा देने की बात आती है, उनको खुद को संकल्प चलता है कि उनको देंगे तो वो तो लौकिक में ही यूज करेंगे, तो वो देना कहाँ तक मर्यादा है?
इसमें मैं समझती हूँ पहली बात तो ये आएंगी कि उसका लौकिक से कहाँ तक कनेक्शन है, किस प्रकार का कनेक्शन है। अगर उसका लौकिक वृत्ति का कनेक्शन चलता ही रहता है तो उसकी बात और है। अगर ज्ञान के रीति से हम कहते हैं वो हमें राखी भेजती है तो हमें हरूभरू उसको पैसा भेजने की जरूरत नहीं है, और हम उसको अपने ज्ञान दान का भी हम उसको वो पत्र लिख करके।
दादी, राखी की बात केवल नहीं है, उसके सिवाय की बात भी पूछ रहे हैं। राखी की बात नहीं है, फिर भी राखी तो ठीक है, पर अदरवाइज
तो राखी के लिए तो मैं ये कहेंगी।
हाँ,
बाकी वो जो वो कहा कि वो दूसरे ढंग से,
हाँ,
वही मैंने कहा कि उनका कनेक्शन किस प्रकार से है। जब वो रहता है यज्ञ में तो उस संबंध को अभी तक बना के रखा है और उसी रीति उन्हों की लेन देन पहले से चलती है, उस रीति का संबंध है या सचमुच उसे निवृत्त होकर के और बाबा का बन के रहते, ये उसका कनेक्शन किस प्रकार है। अगर समझो बहन इस पर कुछ भी थोड़ा भी डिपेंड है, मैंने उन्हों का इस प्रकार से शुरू से संबंध चला आया है और उसी रीति से वो यहाँ भी आके रहता है, संबंध चलाता है, तो उसको चलाना पड़ेगा, पर उसके लिए उसको ऊपर से परमिशन लेना।
हाँ, इसीलिए ये पर्सनल बात है, ये पर्सनल पूछा है, इस रेफरेंस में ये पर्सनल बात हो जाती है, तो दादी जी से पर्सनल मिल करके राय लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते और कह सकते हैं। चक्रधारी बहन जी आप क्या कहते हैं? दादी कह रहे हैं कुछ?
नहीं, मैं समझती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ऐसे प्रश्न पर्सनल होता है, क्योंकि उनका कांटेक्ट कहाँ तक है, किस प्रकार से वो समर्पण हुआ है। कोई होते हैं भले कनेक्शन लौकिक का रखते ही है, पर इधर समर्पित है समय समय पर, उधर जाकर के और उनका कुछ भी होता है तो सुनना करना, कोई सोल्यूशन देना, ऐसे भी चलता है। तो ये हर एक का कुछ अपनी अपनी रीति का होता है। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो जब समर्पित है तो उसका भी पैसा भी समर्पित ही है ना, तो वो कहाँ से लाता है। और अगर नौकरी करता है तो वैसे समर्पित भाइयों के लिए अगर पूछा जाए तो भले नौकरी करते हैं पर पूर्ण रूप से समर्पित होकर के यज्ञ में रहते हैं, तो उनका नौकरी की कमाई भी यज्ञ की है, उसको ऐसा समझना चाहिए। फिर भले यज्ञ समझो जो टीचर है या हमारा ऊपर से भी आगे भी भाई लोग पूछते थे तो दादी बोलती थी आप कमाते हो तो इस प्रकार से हिस्सा, माँ का हिस्सा माना, माँ बाप के लिए हिस्सा, अपने लिए हिस्सा और कुछ यज्ञ में कितना देना है, ये आप उसी प्रकार से बना के चला सकते हो। परंतु वो उनों के लिए है जो आते रहते हैं, जो खुद समर्पित रूप से चलते हैं। जैसे समझो हम लोग समर्पित हैं, हमको जो भी मिलेगा जहाँ से भी मिलेगा, चाहे लौकिक से मिलता है चाहे सेवाओं से मिलता है, हम सब यज्ञ में ही देते हैं ना, हमारी पालना यज्ञ से होती है, हम यज्ञ के लिए निमित्त हैं। तो जब हम यज्ञ के लिए निमित्त है तो हमारा सब कुछ यज्ञ का है। बाकी कनेक्शंस किस प्रकार है या जब रहे हैं यज्ञ में तो भी उस संबंध से पहले से टीचर को भी पता है, ऊपर में भी पता है, उस लेवल से रहे हैं, जिस लेवल से रहे हैं उसी प्रकार अपना कनेक्शन चला सकते। इसलिए मैंने कहा कि ये पर्सनल पूछने का सवाल है, वास्तव में जनरल नहीं। जनरल इतना है कि अगर हम समर्पित होते हैं तो पूरे समर्पित भाव से समर्पित हो जाएं, अगर नौकरी भी करते हैं तो वो भी हम यज्ञ में ही समर्पित करें। हाँ, यज्ञ कहते हैं तो इतना अपने खर्च के लिए रखो, जो नौकरी पर जाते हैं आना जाना करते हैं खर्चा होता है तो रोज रोज बैठ के थोड़ा ही लेगा, वो उसी रीति से हिस्सा अपना उसी रीति रख करके चलाएगा। माना अपना क्लियर होना चाहिए, जिसमें हमारा मन बुद्धि संकल्प कोई ना हमारा चले ना औरों का कोई हमारे प्रति चले। इसलिए कहां भी बात में हम मूंझते हैं तो हम टीचर बड़ी है तो ठीक उससे पूछ सकते हैं, अगर छोटी टीचर्स है तो फिर बड़ों से पूछ सकते हैं,
दादी जी से पर्सनल भी मिल करके पूछ सकते हैं। सूरज भाई से प्रश्न है, दादी ने दे दिया ना उसका जवाब। प्रश्न है, जब हम दूसरों के लिए योग करते हैं तो उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है अर्थात उनको लाभ हो जाता है, परंतु जब अपने लिए करते हैं तो कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती।
तो अपना योग ढीला होगा भाई, क्योंकि जब हम योग के वाइब्रेशंस देते हैं तब हमारी कंसंट्रेशन निश्चित रूप से पावरफुल हो जाती है, देने का पुण्य भी हमें मदद करता है। इसलिए अपनी भी एकाग्रता बहुत अच्छी होगी तो योग में अपने को जरूर अच्छे अनुभव होंगे, संस्कार बदलेंगे, खुशी बढ़ेगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा योग अच्छा हो और उसका प्रत्यक्ष फल हमें न मिल रहा हो। उसकी इंटेंसिटी को, उसकी एकाग्रता को आप थोड़ा और बढ़ाएंगे, सवेरे उठ के अच्छा करेंगे और अपने लिए भी निष्काम भाव से कर लें आप योग, ताकि वो संपूर्ण शक्तियां आत्मकल्याण में लग जाएं। देखिए, जब हम किसी कामना से योग करते हैं तो हमारी सारी शक्तियां उस कामना को पूर्ण करने में जाने लगेंगी। इसलिए आत्मकल्याण के लिए, उसका संपूर्ण सुख पाने के लिए बहुत अच्छी एकाग्रता अमृत वेले भी और कुछ समय और भी बैठ कर योग अभ्यास अवश्य करना चाहिए। चलते फिरते भी हम करते हैं, अगर किसी का पावरफुल होता है तो बहुत सुंदर, अगर पावरफुल नहीं होता तो दो टाइम बैठ के अवश्य करना चाहिए।
अंतिम प्रश्न चक्रधारी बहन जी से है, लिखा है
नौकरी मेरे हाथ में, प्रश्न दो दे चुके हैं, तीन आ चुके हैं पहले भी, तो मैं इसको तीनों को सुनाते हुए अंतिम कर देती हूँ।
हाँ, ठीक है ठीक है।
एक प्रश्न मुझे दिया है कि सेवा केंद्र पर भाई व बहनों के बीच किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, वह क्या क्या मुख्य सावधानियां रखनी चाहिए, इसे स्पष्ट कीजिए। क्योंकि सेवा केंद्र में जब रहते हैं तो समर्पित भाई और बहनें इकट्ठे रहते हैं, परंतु समर्पित भाई बहनों के मध्य किसी तरह भी लौकिकता का थोड़ा भी आभास नहीं होना चाहिए, जैसे कि लौकिक भाई बहन आपस में रहते हैं, एक जगह बैठ के खाते हैं, गप्पे मारते हैं, घूमने चले जाते हैं, कहते भाई बहने हैं ना, ये वो भाई बहने नहीं हैं जो लौकिक हैं, ये अलौकिक हैं, ये ज्ञानिष्ठ भाई बहने हैं। उनका बहनों के साथ जो संबंध चाहिए, बड़ा रेस्पेक्ट का संबंध चाहिए, बाबा की गद्दी में निमित्त बनी हुई ये बहने हैं, ये गुरु हैं, उनके प्रति श्रद्धा और भावनाओं की अवश्य आवश्यकता है। दूसरी बात है, बहनों को भी भाइयों के प्रति वो भावना अवश्य रहे कि ये बाबा के वो पांडव बच्चे हैं जो बाबा के कार्यभार को अपने ऊपर उठा करके और जिम्मेवारी से ये कार्य करने वाले हैं। ये कोई कार्य करने वाले नहीं है, लेकिन प्रभु के कार्य में अपने जीवन को डेडिकेट करने वाले हैं, इसलिए बड़े सम्मान और सत्कार से उनसे काम लेना, ये उनका भी फर्ज बनता है। कभी आपस में बैठे हैं, एक ही टेबल पर बैठे हैं, या किसी एक बहन के साथ एक भाई बैठा है, घंटों बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, या जब भी देखो उस बहन के साथ बैठे हैं, जब भी देखो वो भाई के साथ बैठे हैं, इस प्रकार का जो वातावरण हो जाता है वो सेवा केंद्र के वातावरण को कलुषित कर देता है। एक बड़ी बहन है जो बुजुर्ग है, अगर वो बड़ी बहन किसी एक भाई से बैठी है और उसे विशेष कोई सेवा दे रही है या सावधानी देनी है, वो बैठ सकती है, लेकिन एक बहन छोटी होकर और एक बड़े भाई से भी कितने समय तक अकेली बैठी है और उससे बातें करती हैं, ऐसा वातावरण सेंटर में नहीं होना चाहिए। कभी भी भाई और बहनें अकेले होकर अकेले में बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए, कोई ना कोई संगठन साथ होना चाहिए अगर कोई बात करनी। एक ही टेबल पर बैठे हैं बहन और भाई आधे घंटे से, पहले खाना खाया अब आपसी बातचीत हो रही है, ये वातावरण को प्रदूषित करता है। भाइयों का उतना ही संबंध होना चाहिए जितना सेवा के केंद्र में उनके प्रति सेवाएं होती, उस सेवा का किया और अपने स्थान पर गए और अपना अध्ययन चिंतन किया, उनका फर्ज बनता है क्या वो ज्यादा अपना टाइम ना डिस्टर्ब करें ना किसी का टाइम ज्यादा लें। अगर कोई बहन ज्यादा टाइम किसी भाई से बैठती है वो भी ठीक नहीं, और भाई किसी बहन से बैठता है वो भी ठीक नहीं। वातावरण सेंटर में किसी प्रकार का भी लौकिकता वाला नहीं दिखाई देना चाहिए, ये पहली बात आती है। छोटी सी बात हो गई, बहन नाराज हो गई, भाई बैठा है, बोल क्यों नाराज हो, तुम बताओ तुझे क्यों नाराज हो, ये शब्द और इस प्रकार का बैठना और पूछना ये अलौकिक परिवार की बातें नहीं होती हैं। इसमें बहुत ऑफिशियल, बहुत अलौकिक जीवन, कोई दूर से भी देखे तो लगे ये है दिव्य मूर्तियां जो इस स्थान पर रहती हैं, उनसे लौकिक वासना नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात आती है कि नौकरी करने वाले भाई दूसरे सरेंडर कुमार भाई की तरह पुरुषार्थ में कैसे आगे आए, क्योंकि ठीक है जो सेवा केंद्र में, क्योंकि बाबा ने नहीं कहा है कि सेवा केंद्र में रहो नौकरी करो। हाँ, अगर सेवा केंद्र की किसी आवश्यकता के अनुसार उसको यज्ञ की तरफ से यह आज्ञा मिली है कि आपको नौकरी करनी है तो वो नौकरी करता है, लेकिन अगर वो अपनी मनोइच्छा के अनुकूल ये चाहता है रहूं भी सेवा केंद्र में नौकरी भी करूं, मैं समझती हूँ ऐसे भाई को सेवा केंद्र में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मनोइच्छा अगर नौकरी की है तो आप समझ सकते हो बाहर के वातावरण में जाकर वो सेवा केंद्र के वातावरण में क्या लेकर आएगा और किस प्रकार का माहौल सेवा केंद्र का बनेगा। इसलिए सरेंडर होने से पहले सोच ले कि सरेंडर माना सरेंडर, मुझे जो बिठाओ, जहां बिठाओ, जो खिलाओ, जो कराओ, पे प्रभु तेरी मैं हर रजा में राजी हूँ। जब तक ये मनोस्थिति नहीं बनी है तब तक सरेंडर नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं आना चाहिए। और अगर नौकरी करने की स्वयं की इच्छा है कि नौकरी करके पैसा हाथ में आए, तो जैसे ब्रह्मा कुमारी के लिए उनको ब्रह्मा कुमारी का टाइटल नहीं दिया जाता है जो सेंटर संभालती और नौकरी करती, उसको वुड भी ब्रह्मा कुमारी कहा गया है, उसको डेडिकेटेड ब्रह्मा कुमारी की संख्या में नहीं लाया जाता। ठीक इसी प्रकार अगर कोई भाई नौकरी करता हुआ सेंटर में रहता है तो जरूर है कि अगर बड़ों ने उसको आज्ञा दी है तो उस आज्ञा के अनुकूल उसकी लौकिक संबंध वाले भी उससे कुछ एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि इनको नौकरी करता हमें भी थोड़ा दे, और जरूर है व्यवहार को भी निभाएगा और अपने अलौकिक परिवार को भी निभाने के लिए कुछ ना कुछ उसका लौकिक को भी उसे करना ही पड़ेगा। अगर वो लौकिक वालों को कहे मैं कुछ नहीं करता हूँ तो कहेंगे क्या कमा के सारा ब्रह्मा कुमारियों को देता है, हमारा भाई तो सब कुछ इतना पैसा लाता है ब्रह्मा कुमारियां सब ले लेती हैं, वो सर्विस नहीं होती है, वो डिसर्विस हो जाती है। ऐसे भाई को अपनी बहनों को परिवार को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, इसलिए इतना बोझ उठाने जा रहे हैं वो तो पहले सोच लें कि इस बोझ से बोझिल होने से पहले क्यों नहीं एक स्थान अपना अलग बना के हम रहते और अपना पूरा सेवाओं में सहयोग देते हैं, अपना खाना पीना सब हम स्वयं खाते, नहीं बना सकते तो हम यज्ञ में दे करके भोजन खा लेते हैं, लेकिन हम बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं और अपने परिवार वालों को भी समय पर जरूरत के समय सहयोग देते हैं और यज्ञ में संपूर्ण रूपेण सहयोग देते हैं। ऐसा बनकर रहना मैं समझती हूँ ज्यादा सेवा में सहयोगी हो सकते हैं। ये मेरा विचार है, मेरा ही नहीं विचार, मैं समझती हूँ कि प्यारे बाबा ने कभी सेवा केंद्र में रहने वालों को नहीं कहा नौकरी करो। हमको ऐसा भी समय आया रूस देश में जबकि सेवा केंद्र का किराया देने के लिए पैसे नहीं होते थे और ज्यादा सेवा हम नहीं कर सकते थे, बहुत से भाइयों ने कहा कि दीदी हम नौकरी करके अच्छा बिजनेस करके कमाएं और बाबा का अच्छा सेंटर ले। हमने कहा हमें ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है कि आप अपना ज्यादा समय नौकरी में लगाओ और सेवा केंद्र की ज्यादा पैसा देने के लिए। सेवा केंद्र कने कने से चला है और कने कने से ही चलेगा, इसलिए आपको अपना धंधा करना है जैसा करना है कीजिए, अपने समय और अपना स्वास्थ्य जो सेवा में दे सकते हो उतना आप दीजिए। बाकी कोई कहे सेवा केंद्र के लिए मैं कमाता हूँ, सेवा केंद्र को जरूरत है इसलिए मैं कमाता हूँ, तो मैं समझती हूँ अगर कमाता हूँ तो फिर दूसरे परिवार भी आपसे चाहेंगे, उनको भी कुछ देना ही पड़ेगा।
बहुत अच्छा बहन चक्रधारी जी, मैं समझती हूँ कि सब बातें आप सबको क्लियर हो गई होंगी। हम हमारे पूरे पैनलिस्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और यहाँ हमारे पैनल को हम समाप्त करते हैं। ओम शांति।